हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 319। अरुण ने एक के बाद एक शिकायतें करते हुए कहा, और मेरी कोई फिक्र नहीं रहती है ना आप दोनों को ही, मुझे बिल्कुल भूल ही रहते हो। अब देखो कितने महीनों बाद मिल रहे हैं हम। वैसे भी आपने इतना बड़ा घर ले लिया, बताया भी नहीं, किराए पर है क्या? नैना ने तुरंत ही उसे बताया, अरे नहीं, ये घर मेरा नहीं है, ये घर तो अक्षत कपूर का है। तुमने उनकी फिल्म देखी होगी, एक्टर अक्षत कपूर। अरुण थोड़ी हैरानी से पूछता हुआ बोला, अक्षत कपूर, सच में उनका बंगला है ये? मैंने तो बहुत सुना है उनके बारे में, और उनकी फिल्म देखने के बाद से तो कितनी रिसर्च भी की थी, लेकिन उनका एड्रेस कहीं पर भी नहीं मिला। वाओ, कितना बड़ा बंगला है। लेकिन जी, आप यहाँ, या आपके साथ कोई फिल्म आ रही है? नैना ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अरुण, अंदाज़ा लगाना बंद करो। स्वीटी ने उन दोनों की बात सुनकर नैना से पूछा, दी, आपने अपने भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है क्या? नैना उसकी तरफ देखकर सोचते हुए बोली, हाँ, शायद कभी मौका नहीं लगा, और हम उस सिचुएशन में भी नहीं मिले कि इस बारे में बात होती, लेकिन कोई बात नहीं, अब बता देती हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर अरुण ने बीच में बोला, ये किस बारे में बात हो रही है, सीधी तरह से बताइए दी, और कितना सस्पेंस क्रिएट करेंगी? कैसे जानती हैं आप अक्षत कपूर को? मूवी के सेट पर ही मिली होंगी। नैना ने उसे अच्छी तरह समझाते हुए कहा, कैसे मिले कैसे नहीं, ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी फुर्सत में, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना जान लो कि हम दोनों एक दूसरे के सब कुछ हैं, मतलब प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, शादी भी, लेकिन अभी हम दोनों हमारा रिश्ता छुपा कर रखना है। अरुण उसके लिए खुश होते हुए बोला, ओ ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस दी, बट आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो हमेशा ही आपके लिए कुछ होता, और वैसे भी अगर आपने किसी को सिलेक्ट किया है तो ज़रूर कुछ तो बात होगी उस आदमी में, वो दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, और जितना मैंने सुना है काफ़ी अच्छा इंसान भी है। नैना ने भी मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सो मच अरुण, मुझे तुझसे इसी तरह की सपोर्ट की उम्मीद थी, लेकिन फ़िलहाल तुम अभी किसी से भी इस बारे में बात मत करना, ना ही घर पर और ना ही अपने दोस्तों में। अरुण ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वैसे मुझे एक बात का बुरा लगा, आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन स्वीटी को पहले से ही इस बारे में पता है, वो मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना आपके लिए? स्वीटी भी उससे लड़ने वाले अंदाज में बोली, हाँ बिल्कुल हूँ, तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और तुम मुझसे क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? अपना, तुम्हारा मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। उन दोनों को लड़ाई करते देख नैना बीच में आते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हो। अरुण ने एकदम पूछा, हाँ लेकिन सोनू दी से ज़्यादा नहीं ना? अरुण की ये बात सुनकर नैना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, फिर कुछ देर बाद अरुण वहाँ से चला गया, क्योंकि वे लोग नहीं चाहते थे कि अरुण वहाँ पर किसी की भी नज़र में आए। नैना ने सुनैना और अक्षत के मना करने पर अरुण से ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं की और उसके सामने एकदम नॉर्मल एक्ट किया। अरुण बंगले से बाहर तो निकल आया, लेकिन उसे पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि नैना और स्वीटी मिलकर उससे कुछ तो छुपा रही हैं, क्योंकि उससे बात करते हुए बीच बीच में वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही अजीब तरह से देख रही थीं, जैसे कि किसी बात को लेकर इशारे कर रही हों, और उन्हें लगा कि अरुण ने ये नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अरुण ने वो सब कुछ नोटिस किया और उसे समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है, इसलिए वो बंगले से बाहर निकलने के बाद सीधे अपने घर नहीं गया और वहाँ गार्डन में ही बड़े से पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक ब्लैक शीशे वाली पूरी ब्लैक मर्सिडीज आकर वहाँ बंगले के मेन गेट पर रुकी, जिसकी उम्मीद अरुण को बिल्कुल भी नहीं थी, और उस मर्सिडीज के वहाँ आकर खड़े होने के कुछ देर बाद एक इंसान बंगले से बाहर निकला, जिसने वही लॉन्ग कोट और जीन्स पहनी हुई थी, साथ में जूते और हैट लगाया हुआ था। दूर से देखने पर अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी है या फिर औरत, लेकिन वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने साथ में सनग्लासेस भी लगाए हुए थे। उस शख्स को घर से निकलते हुए देखकर अरुण ने खुद से सवाल किया, ये कौन है और वहाँ पर घर में क्यों छुपा हुआ था? क्या नैना दी को इस बारे में पता है या फिर नहीं? अरुण के मन में ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो गेट से काफ़ी दूर वाले पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, जिससे कि वो कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड या फिर किसी और की नज़र में ना आए। उस शख्स को कोई भी दरवाजे तक छोड़ने नहीं आया और उस इंसान ने भी दरवाजे से बाहर निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि इधर उधर देखते हुए तेज कदमों से चलकर वो मेन गेट पर पहुंचा और उसके वहां पहुंचते ही मर्सिडीज का दरवाजा खोला गया और उसके बैठते ही गाड़ी का दरवाजा फिर से बंद हो गया और कुछ ही देर में वो कार वहां से चली गई। अरुण ने अपने मन में कहा और फिर कुछ देर बाद वो दरवाजे से ही बाहर निकल गया। कौन था ये और चल क्या रहा है यहाँ पर? मुझे शायद पता करना पड़ेगा। इस बीच उसने कार की पूरी डिटेल और साथ ही उस मर्सिडीज का नंबर भी नोट कर लिया था और अपने फोन में एक दो फोटो भी क्लिक कर ली थीं। घर के अंदर से इस बारे में किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन स्वीटी उस वक्त अपने रूम की खिड़की पर खड़ी हुई थी और वहां से मेन गेट नजर आता था और उसने अरुण को निकलकर जाते हुए देख लिया, लेकिन किसी से भी कुछ नहीं कहा। उसके मन में ये सवाल जरूर आया, जब अरुण इतनी देर पहले उन लोगों से मिलकर चला गया था तो फिर इतनी देर तक वो कहाँ पर था और इतनी देर के बाद बाहर क्यों निकला? आखिर वो कहाँ था और क्या कर रहा था? स्वीटी ये सब सोच ही रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इस बारे में उसे नैना को बताना चाहिए या फिर नहीं, इसलिए उसने ये बात अपने तक ही रखी। अक्षत के बंगले से जो उस अजीब से हुलिये में बाहर निकला था वो कोई और नहीं सुनैना थी और वो चुपचाप ही उस कार में ये सोचकर बैठी थी कि वो आदित्य ने उसके लिए भेजी होगी, क्योंकि वो किसी और कार में वहां पर आई थी लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रुकी थी, जिससे कि सभी को शक हो जाता उस पर। और अक्षत के बंगले के बाहर एक अनजान कार देखकर न्यूज वालों को भी एक नई न्यूज बनाने का मौका मिल जाता। वहां अक्षत के बंगले से निकलने से पहले ही सुनैना ने आदित्य के नंबर पर मैसेज कर दिया था और उसे कुछ दिन पहले ही वो कार वहां पर आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन ये वही कार नहीं थी जिससे सुनैना वहां पर आई थी। लेकिन सुनैना ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि आदित्य ने सिक्योरिटी रीजन की वजह से कार को चेंज किया होगा और वो आराम से कार में बैठी हुई थी। कार के अंदर बैठते ही सुनैना ने अपने सनग्लासेस उतारकर हाथ में पकड़ लिए क्योंकि वे डार्क कलर के थे और फिर थोड़ा सा साइड में आकर खिड़की से बाहर देखने लगी। कार के शीशे चढ़े हुए थे लेकिन फिर भी उसे बाहर का रास्ता नजर आ रहा था क्योंकि वे टू वे मिरर थे। सुनैना को बाकी सबसे मिलकर आज काफी अच्छा लगा इतने दिनों के बाद, और वो अब इस बारे में ही सोच रही थी कि कब ये सब खत्म हो और वो आदित्य के साथ अपनी नॉर्मल शादीशुदा लाइफ जी पाए। और तभी उसे याद आया कि कुछ दिनों बाद ही उनकी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है और उनकी शादी को एक साल पूरा हो जाएगा। कितने उतार चढ़ाव आए थे इस बीच और उनका रिश्ता भी कहाँ से कहाँ तक का सफर तय करके यहाँ तक पहुँचा था।
ये सब सोचते हुए सुनैना को अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई सी महसूस हुई और ये फीलिंग उसे काफी अच्छी लगी क्योंकि शायद वो इस बारे में सोचती हुई थोड़ी सी एक्साइटेड थी। सुनैना ने अपने मन में कहा, पता नहीं क्यों कर रहा है विराज ये सब। मेरा तो मन कर रहा है कि जाकर उससे मिलूं और साफ साफ बोल दूं उससे कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले, हम दोनों का कुछ नहीं होने वाला और मुझे छोड़ दे, सुकून से जीने दो और खुद भी किसी और को मौका दे अपनी लाइफ में। इसी बीच उसने बाहर के रास्ते पर ध्यान दिया तो उसे वो रास्ता बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लगा और ये भी कुछ नहीं था जहाँ से वो अपने पुराने बंगले से यहाँ अक्षत के बंगले तक आई थी। ये रास्ता एकदम ही अलग था जो कि सुनैना को पता भी नहीं था, इसलिए उसने तुरंत ही ड्राइवर से पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है और आपको पता तो है ना कि मुझे कहाँ लेकर जाना है? ड्राइवर ने बहुत ही सहूलियत से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से पता है मैडम, लेकिन ये रास्ता ही सबसे ज्यादा सेफ है और सर ने मुझे इसी रास्ते से आपको लेकर आने के लिए बोला है। सुनैना ने ड्राइवर की बातों पर भरोसा कर लिया और फिर कुछ भी नहीं बोली। इसके अलावा उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं था क्योंकि लोकेशन ट्रैक होने का डर था आदित्य को, क्योंकि उसका नंबर विराज के पास भी था और वे फिलहाल छुपे हुए थे, इसलिए अर्जेंटली सुनैना के लिए नया फोन और नया सिम नहीं बनवा पाया था। लेकिन अब उसने इस काम के लिए नदीम और अरविंद को बोल दिया था, लेकिन फिलहाल सुनैना बिना मोबाइल फोन के यहाँ पर आई हुई थी। सुनैना को लगा कि वो काफी देर से ट्रैवल कर रही है और अब तक वो वहां पर नहीं पहुंची, इस वजह से वो फिर से ड्राइवर से कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने सोचा कि ड्राइवर ने रास्ता चेंज किया है तो सकता है या फिर किसी को चकमा देने के लिए वे जानबूझकर लंबे और घुमावदार रास्ते से जा रहे हैं। अपने मन में चलती हुई उलझनों के बीच सुनैना ने खुद से ही ये सब सोच लिया और उसके मन में कभी कुछ चल रहा है क्योंकि उसे पूरी तरह से आदित्य के प्लान के बारे में भी खबर नहीं थी। आपको इतने दिनों से आदित्य के साथ थी, थी, लेकिन आदित्य ने कहा था कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और इसके लिए अभी कुछ टाइम लगेगा और जब तक उन दोनों को छुपकर ही रहना है। सुनैना खुश थी क्योंकि वो आदित्य के साथ थी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि वो आदित्य पर विश्वास करती है और आदित्य ने भी कहा है कि जब सही टाइम होगा वो सब कुछ बता देगा। ये सब सोचते हुए सुनैना ने देखा कि गाड़ी एकदम से रुक गई और ये वो जगह बिल्कुल भी नहीं थी जहाँ वो आना चाहती थी और आदित्य का बंगला तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसे वहाँ पर ही आना था। इसलिए उसने थोड़ा सा घबराते हुए ड्राइवर से पूछा, ये किसका घर है? ये कहाँ पर लेकर आए हो आप मुझे भैया? मुझे यहाँ पर नहीं आना था। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको बिल्कुल सही जगह लेकर आया हूँ। ड्राइवर के पीछे मुड़ते ही सुनैना की नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी वो एकदम ही अपनी जगह पर जम गई और उसके मुँह से निकला, तुम? क्रमशः